ये फलानी जाति का, ये फलानी वर्ग का, ये फलाना है ढींगना है, जाति फलाना वर्ग ढींगना में वो बैठा तेरा वही का वही है सच्चिदानंद स्वरूप। जैसे पेड़ पौधे नदी तालाब पहाड़ों को प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर निशंक भाव से आनंदित होते, ऐसे ही सारी दुनिया में तेरे पिया रूपी प्राकृतिक सौंदर्य को देख, तेरे पिया प्राकृतिक सौंदर्य में तेरे पिया को देख और कुरूप में भी तेरे पिया को देख। अशुभ मत देख, अशुभ की गहराई में शुभ छुपा है, शुभ की गहराई में शुभ छुपा है। ऊपर सागर में झाग बुलबुले फैन दिखता है, लड़ते झगड़ते मरते मिटते, लेकिन गहराई में शांत जल, ऐसे सब की गहराई में शांत पर ब्रह्म परमात्मा है। जिसने खोजा उसने पाया, और जो डूबने से डरे हैं वो किनारे बैठे रहे, संसार के थपेड़े खाते रहे। इसलिए अपने आत्म उदधि में गहरे में जाना चाहिए, उस आत्मदेव के विषय में सुने, उस परमेश्वर के विषय में विचारे, उस परमेश्वर के स्वभाव को जानकर अपना मन उसमें विश्रांति दिला दे, काम बन जाए। मन रूपी मित्र ऐसा है कि उसको परमात्मा में लगा दे तो महान मित्र, और संसार के चिंतन में लगाते तो महान शत्रु का काम करता है। मन ही नरक ले जाता है, मन ही स्वर्ग में ले जाता है, मन ही माई बनाता है, मन ही भाई बनाता है, मन ही जातिवाद में ले आता है, मन ही कामी बना देता है, क्रोधी बना देता है, मोही बना देता है, अहंकारी बना देता है, लालची बना देता है, न जाने क्या क्या बना देता है मन। तो मन के साथ जुड़कर अगर जिया तो गया, और परमात्मा का ज्ञान सुनकर परमात्मा में टिकने का प्रयत्न करवाया मन को तो परमात्मा से जोड़ देगा, जगत का चिंतन करके जगत के पीछे लगाया मन को तो जगत में भटका देगा। अब मन को लगाना तेरा पुरुषार्थ है, मन को उचित जगाना उचित जगह लगाना तेरा पुरुषार्थ है। पुरुष से अर्थ इति पुरुषार्थ, पुरुष वो परमात्मा है, परमात्मा के अर्थ मन लगा तो पुरुषार्थ हुआ। आजकल तो प्रकृति के चीजों में भी लगते है, कह रहे इसने तो बड़ा पुरुषार्थ कर दिया, दो होटले बना ली, क्या जख मार ली इसने बड़ा पुरुषार्थ किया, इतनी इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन फिर क्या बहादुरी हो गई, इसने बड़ा पुरुषार्थ किया, दो मील का मालिक बन गया। ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं है, बड़ी बहादुरी तो यह है कि अमिट में मन लग जाए। दो मील का मालिक बन गया तो क्या है, बड़ा ढेर करके मरेगा और क्या करेगा, ज्यादा टेंशन लेके मरेगा और क्या करेगा। तो जो धनाढ्य है, जिनके पास साधन सामग्री है, वो सुविधाओं का सदुपयोग करके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लगाकर अपने परमात्मा सुख को जल्दी पा सकते हैं। जिनके पास अभाव है, कमी है, साधन सामग्री नहीं है, वे साधन सामग्री की इच्छा छोड़कर तुरंत परमात्मा शांति के रास्ते जा सकते हैं। जिनके पास गरीबी है, साधन सामग्री नहीं है, वो साधन सामग्री की वासना हटा दे, बस काम बन जाएगा। और जिनके पास साधन सामग्री है, वो साधन सामग्री ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उसका सदुपयोग करे, दोनों को फायदा होगा। होता क्या है कि जिनके पास साधन सामग्री होते है वो चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जिनके पास नहीं है वो होने वालों को देखकर अपनी वासनाओं बढ़ाते रहते। धनी भी दुखी, निर्धन भी दुखी, पठित भी दुखी, अनपढ़ भी दुखी, माई भी दुखी, भाई भी दुखी, बल्लक भी दुखी, जवान भी दुखी, कोई किसी में। मानो दुख बनाने की फैक्ट्री बना लिया मन को। जो मन ब्रह्म स्वरूप में टिका सकता उसी मन को ठीक संग नहीं मिला, ठीक चाल नहीं मिली तो वही मन कहीं का नहीं रखता। हिमालय की तलेटी में पर्वत के निकट दीर्घ तपा तपस्वी तप करते थे, उनकी आज्ञाकारी पत्नी और दो बेटे थे, एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। पावक जरा ज्ञानवान था पिता के नाए, पुण्यक जरा ऐसे ही था। समय आया और दीर्घ तपा ऋषि ने देखा कि 8 मास के शरीर का आयुष्य पूरा हो रहा है, अभी इसका शरीर का आयुष्य पूरा हो रहा है, लेकिन जहां आयुष्य की कोई असर नहीं पड़ती, मैं तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप हूं। वो तो अपनी धारणा शक्ति थी, ध्यान था, अनुभव था, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को शांत स्वभाव ब्रह्म में। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही वो ब्रह्म परमात्मा है, दूसरा कोई सत्य सार नहीं। उस एक ब्रह्म परमात्मा में शांत हो गए, जैसे सांप केचुली छोड़ देता है। सांप को भी ऋषि पद्धति देते, ऋषि पांच ऋषि जैसा साफ सुथरा रहता है। सांप को कभी गंदा नहीं देखा होगा, केचुली छोड़ देता फिर उसकी फिक्र नहीं करता। ऐसे दीर्घ तपा ऋषि ने अपने देह अध्यास को, अपने शरीर को मैं मानने की गलती छोड़ दी और निश्चिंत नारायण स्वभाव में स्थित हो गए। कुछ दिनों के बाद पत्नी ने भी अपने पति के धर्म का अनुसरण करा और पति लोक को प्राप्त हुई। जहां पति की चित्तना ठहरी थी वहीं वो ठहरी। तो छोटा लड़का हाय पिता हे माँ करके रोने लगा, बड़ा परेशान हुआ, दुखी हो गया। लेकिन पावक ने कहा कि तू किसके लिए रोता है? अगर पिता के लिए रोता है, माता के लिए रोता है, तो अगले जन्म में तेरी माताएं तो बहुत हो गई। हिरणी तेरी माता थी, हिरण तेरा पिता था, उनके लिए रो ले। कुशारू देश में तू अम्ब था, बंग देश में तू ऐसा बना, कहीं तू मेढक बना, कहीं तू हाथी बना, किसी देश में तू घोड़ा बना। एक बार तू गाय का बछड़ा बना था, 10 महीने जिया और मर गया। मेरे और तेरे भी कई बार संबंध हुए, लेकिन तू तेरे मन के पीछे पीछे चल के अभी तक ये स्थिति में। और मैंने धीरे धीरे अपने मन को पिता के अनुरूप चलाया, अपने आत्म स्वरूप में, इसलिए मैंने तेरे कई जन्मों को देख लिया। रोना है तो इस बात का रो कि मनुष्य जन्म मिला और तू अपने मन को, अपने आत्म स्वरूप को जानने में नहीं लगाया। पिता के लिए रोता है, माता के लिए रोता है, लेकिन पिता का वास्तविक स्वरूप क्या है, माता का वास्तविक स्वरूप क्या है, तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको नहीं जाना, इसके लिए तू रो। अब तेरे रोने से उनका शरीर जीवित नहीं होगा, तेरे रोने से तेरा चित्त मोह माया में फंसेगा। तू भाई विचार कर, विवेक का आश्रय ले। बिन सत्संग विवेक न हो गई, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मैं क्या हूँ, मेरा क्या है। बोले चलो बेटी की शादी हो जाए, सिंह के कंधे पे बैठे हम निश्चिंत हो जाए। अब बेटी शादी हो जाएगी, सिंह के कंधे पे बैठेगी, माँ बाप निश्चिंत हो जाए। ये सब बेवकूफी की कल्पना है। सिंह के कंधे पे या सिंह के साथ, तो सिंहों का सिंह तो परमात्मा है। बेटी को परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा में प्रीति हो जाए, तो तू निश्चिंत होगा। नहीं तो किसी की बहू बनेगी, किसी की देराणी बनेगी, किसी की जेठानी बनेगी, किसी की कुछ बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, किसी की भाभी बनेगी। अब परेशानियां तो उसके जीवन में आएगी आएगी। बेटी की शादी हो जाए, सिंह कुले चढ़े, सिंह के कंधे पे बैठे हम लोग निश्चिंत हो जाए। अरे 6 महीने के बाद तो चिट्ठी आई कि माँ तो मैं तो मर जाऊंगी, मेरी देराणी ऐसी, मेरे पति मेरे खून ऐसा बोलते, मेरे ये होता वो होता, ये होना है, हॉस्पिटल में नाम लिखा क्या थी, डर लगता है, प्रसूति की पीड़ा होने, ये सिंह के कुले चढ़ गई, सारे दुख मिट गए। बेटी हो चाहे बेटा हो, भाई हो चाहे भतीजा हो, जब तक इस मिथ्या देह को मैं मानेगा, मिथ्या शरीर को, संसार को सत्य मानेगा और सत्य स्वरूप परमात्मा को नहीं जानेगा, तब तक दुखों का अंत तो हो ही नहीं सकता है। चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी अमीर बन जा, कितना भी पहलवान बन जा, कितना भी ईमानदार बन जा, कितना भी बेईमान बन जा, लेकिन ईमानदार होगा तो परमात्मा में रुचि होगी, बेईमान होगा तो परमात्मा में रुचि नहीं होगी, नश्वर में रुचि होगी। ईमानदार बनना तो अच्छा है, लेकिन ईमानदार होकर ही मरना नहीं है। ईमानदारी जहाँ से प्रसन्नता पाती उस परमेश्वर को पाकर, ईमानदारी और बेईमानी जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सब स्वप्न तुल्य भाष्य ऐसे सत्य स्वरूप में जगना है, जिसको मौत मार नहीं सकती, शरीर का रोग जिसको छू नहीं सकता, विकार जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, हम उस सोहम स्वरूप में शांति पा रहे। सभी में हम ही है वो सोहम रूप, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो सोहम। जिनका विवेक तीव्र हो गया, स्वरूप में स्थिति है, देह में स्थिति नहीं है, परिस्थितियों में स्थिति नहीं है, स्वरूप में स्थिति है।
जैसे मतवाला दुष्ट हाथी बिना अंकुश के नहीं जीता जा सकता, वैसे ही मन भी बिना ठीक युक्ति के नहीं जीता जा सकता। जो उचित युक्ति को छोड़कर मन को जीतने का उपाय करते हैं वे हठी हैं। उनको एक भय के पीछे दूसरा भय और एक दुख के बाद दूसरा दुख होता रहता है। जो बिना युक्ति के बलपूर्वक चित्त को जीतने का प्रयत्न करते हैं वे मूर्ख उस व्यक्ति के समान हैं जो कि उन्मत्त हाथी को कमल के तंतुओं से बांधना चाहते हैं। चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की निश्चित युक्तियां हैं।
मन को जीतने का युक्तियां हैं। साधुओं का संग, जिनका मन भगवान में है उनका संग, अध्यात्म शास्त्रों का विचार, प्राणों का निरोध और विषय विकारों से आवश्यकताओं बढ़ाने से थोड़े बाहर आ जाए। व्यक्तिगत अपने लिए आवश्यकताएं वस्तुओं की कम करता जाए और जिन वस्तुओं में रुचि है भोगने की उसका ही दान करे, आसक्ति मिटती जाए, वही वस्तु छोड़े। पहले तो तीर्थ में जाते ना, जो प्रिय वस्तु है छोड़ो। तीर्थ का फल ये है कि कोई न कोई प्रिय वस्तु छोड़ो। ये प्रिय वस्तु आसक्ति, आसक्ति मिटाने के लिए तीर्थ में जाते थे, नहाते थे और कोई न कोई प्रिय वस्तु छोड़ो। जिसको जो प्यारा है अधिक वो छोड़ो, क्योंकि अधिक प्यारी वस्तु ईश्वर से दूर करेगी, और वो वस्तु या तो खप जाएगी या तो वस्तु को भोगने की सामर्थ्य खप जाएगी, वासना बढ़ जाएगी। और जिसको समझो मांस प्रिय है, मांस खाने की आदत ज्यादा है, तो मर जाएगा तो उसकी वासना तीव्र रहेगी, तो फिर उसको जहाँ खूब मांस खा सके उसी चोले में प्रकृति डाल देगी, शेर बन जाएगा, गिद्ध बन जाएगा, मांसाहारी जानवर बन जाएगा। समझो किसी को द्वेष रहता है तो दूसरे जन्म में सांप बनेंगे, नागन बन जाते हो। आदमी होते तो नाग बन जाते, महिलाएं होती तो नागण बन जाती, सर्पिणिया। सर्प भी कई प्रकार के होते हैं, सैकड़ों प्रकार के, 97 प्रकार के तो सर्प बिना जहर के होते हैं, लेकिन फूंक मारने की तो आदत, गुस्से की आदत तो रहती है सब, आंधड़ी चाकण के सिवाय। जो कि उल्टी उल्टी खाते ना, झूठ बोलते हैं, वो दो दो मुंह वाली सर्पिणिया बनती, आंधड़ी चाकण बनती, बिच्छू बनते हैं, चाड़ी खोर है तो ऐसे बनते हैं, ऐसा ऐसे वर्णन आता है। उसका जैसा स्वभाव उसके अनुरूप की योनियों में प्रकृति उनको डालती। समझो बहुत कामी है तो या तो कबूतर के शरीर में, या तो बकरे के शरीर में, या तो भूंड के शरीर में। बहुत कामी और बहुत बच्चे चाहिए तो भूंड, और बहुत कामी है बच्चे नहीं चाहिए तो फिर बकरा। उसकी वो वास्तव पूर्ति के लिए वही योनि ठीक। और भी छोटी मोटी कई योनियां, कोई पार नहीं है। जो वासनाएं आवश्यकताएं तो बहुत है, लेकिन उस सब में मुख्य आवश्यकता खोजनी चाहिए और शाश्वत आवश्यकता। तो मुख्य आवश्यकता है कि हम सदा सुखी रहे, शाश्वत आवश्यकता है कि हम सदा सुखी रहे। तो जो सदा है उसको पालो, तो बाकी की आवश्यकता को महत्वहीन कर दो तो उसमें बैठ जाएगा। इसलिए मुख्य आवश्यकता का ज्ञान और मुख्य आवश्यकता का मनन करने के लिए मन को लगाना चाहिए, मन को जीतना चाहिए।
तो मन को जीतने का उपाय जानकारों के अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो हाथी को कमल के तंतु से बांधने की बेवकूफी है। मन तो बड़ा बलवान है, तीर्थ में जाएंगे मन जीतेंगे, नर्मदा किनारे जाऊं मन जीत गया हूं, उधर जाके कुटिया बनाऊं मन जीत गया हूं, ये नहीं जीतेगा। मन जीतने के खास उपाय हैं, एक तो अध्यात्म शास्त्र का विचार, प्राणों का निरोध, वासनाओं को क्षय करना और साधु पुरुषों का संग। मन को जीतने का ये उपाय है सरल और सार्थक। इसी प्रकार के और छोटे मोटे साधु का संग करेगा तो और छोटे मोटे उपाय अपनी योग्यता के अनुसार मिल जाएंगे।
अपने ही ज्ञान और पुरुषार्थ द्वारा
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को साक्षात्कार हो गया, वो साक्षात्कार का आभास होता है। साक्षात्कार हो गया ऐसा तो हमको तो पता नहीं। वो लड़का पढ़ता है मास्टर के पास और चिल्लाता है कि मैं पास हो गया हूँ, मास्टर से पूछो, मास्टर बोलता मेरे को पता नहीं, तो फिर अपने मन से ही पास मान लेता है वो तो ब्रह्म छू, मन तो था तू थानु थे थी गयु बधु। साक्षात्कार नहीं, झलक ने साक्षात्कार मानी ले, थोड़ा सा झलक थोड़ा सा साधारण व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा सा मिल गया तो उसको मानते साक्षात्कार। ऐसा तो रोज सबको साक्षात्कार हो जाता है, ध्यान कराता हूं तब तो सबको आनंद आनंद आता है। लेकिन आनंद के मूल में टिकना भी है ना, परमात्मा का साक्षात्कार कोई साधारण बात नहीं है। एक जन्म में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर दो जन्म दस जन्म भी दाव पे लगते हैं तो सौदा सस्ता है। ये वो अनुभव है, ये वो चीज है। भगवान का दर्शन हो जाए तभी भी साक्षात्कार करना बाकी रह जाता है। भगवान का दर्शन तो शाकुनी को, दुर्योधन को, कई राक्षसों को, कंस के आदमियों को भी हो गया था, क्या हो गया। साक्षात्कार अलग बात है। मंथरा को भी राम जी का दर्शन हो गया था, जीसस का दर्शन जुड़ा को, जुड़ास को, यहूदा को हो गया था। तो जीसस का दर्शन, जीसस के क्रोस को लोग गले में पहनते, भगवान की बात, जीसस खुद थे तो क्या हो गया, क्या मिल गया। साक्षात्कार वो है कि जहाँ फिर कोई प्रकृति का घटना सत्य ना दिखे, ईश्वर ही सार दिखे और वो अपने से अभिन्न निमित्त उपादान लिखे, सारे सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान लिखे, वह साक्षात्कार है। और इन आंखों से नहीं दिखता है, ज्ञान से समझ में आता है। जैसे मेरे को कोई बोले कि तुम महाराज मारवाड़ी हो, छन्ना जी राघा जी पटेल हो, तो मैं बोलूं नहीं, सब आदमी कसम खाए कि तुम छन्ना जी राघा जी पटेल, तो नहीं मैं तो नहीं, मेरे को पता है। साक्षात्कार का मतलब ये कि ब्रह्मा जी भी संदेह ना कर सके, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं तो मन को जीतने की युक्तियां चार, फिर आगे क्या है।
अपने ही ज्ञान और पुरुषार्थ द्वारा चित्त जितनी अच्छी तरह से शांत हो जाता है, वैसा न तप से, न तीर्थ से, न विद्या से, न यज्ञ से और न किसी विशेष अनुष्ठान से हो सकता है।
अपने इस तरह मन जो परमात्मा में स्थिर हो जाता है, वो यज्ञ करने से, तप करने से, धन से, दुनिया की चीजें पाने से, वो सुख या वो ऊंचाई नहीं आती जो अपना चित्त चैतन्य में स्थिर करने से आता है। चक्रवर्ती राजा बनने से वो सुख नहीं मिलता, वो मंगल नहीं होता, सारे विश्व में प्रसिद्ध होने से भी वो फायदा नहीं होता जो अपना चित्त चैतन्य में स्थिर करने से होता है। विश्व के बड़े बड़े उद्योगों से दो क्षण परमात्मा में टिकना सर्वोपरि है। विश्व के तमाम संपत्तियों की अपेक्षा चित्त का परमात्मा में विश्रांति बड़ी संपत्ति है। एक महापुरुष बोलते थे कि परमेश्वर के लिए दुनिया को छोड़ना पड़े तो लात मार दे, छोड़ दे, लेकिन दुनिया के लिए भगवान को मत छोड़ना। भगवान के लिए दुनिया छोड़नी पड़े तो दो कौड़ी की समझ के छोड़ दे, लेकिन दुनिया के लिए भगवान का रास्ता मत छोड़ियो। अगर भगवान का रास्ता छोड़ दिया तो दुनिया की चीजें रहेगी नहीं और भगवान भी मिलेंगे नहीं, दोनों तरफ से रीते रह जाएंगे, ठगे रह जाएंगे। दुनिया के कारण दुनिया के स्वामी को छोड़ दिया तो दुनिया की चीजें तो रुकेगी नहीं, रहेगी नहीं, ठन ठन पाल हो जाएगा। और भगवान के लिए दुनिया छोड़ दी तो छोड़ गई, क्योंकि वो तो वैसे भी छूटने वाली है, तो भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ दी तो छोड़ दी, वैसे भी कौन लेगा दुनिया को, तो भगवान भी मिलेगा और दुनिया भी पीछे पीछे चलेगी। भगवान भी मिल गया, दुनिया भी पीछे पीछे, और वहां तो भगवान भी नहीं मिले और दुनिया में भी कोई पूछे नहीं। अब पूछे तो अहंकार, ना पूछे तो विशाल। और भगवान मिल गए तो पूछे, वाहवाही करे तो भी कुछ नहीं, निंदा करे तो भी कुछ नहीं, भगवान में तृप्त है। भगवान मिली जाते पछी, ना मिले तो ही कशो बंधु नहीं, नहीं मिले तो दुर्भाग्य दुर्भाग्य है।
अपने ही ज्ञान रूपी पुरुषार्थ से इच्छित वस्तुओं के त्याग से चित्त रूपी वेताल पर विजय प्राप्त होती है। विवेक द्वारा इस बात का निश्चय कर लेने पर कि मन आत्मा का ही अंश है और दृढ़ अभ्यास के द्वारा मन आत्मा के साथ एकता का अनुभव करता है, इच्छित वस्तु का त्याग करके जो विकार रहित स्थित हो जाता है वह मन को इस प्रकार जीत लेता है जैसे हाथी को अंकुश। मन की वासना नाम वाली चंचलता जो अविद्या है उसको विचार द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। जो जो दूसरी वस्तुओं के प्रति वासना मन में उठे उसको त्यागने से अविद्या क्षीण हो जाती है। मन के जीतने की एक युक्ति यह है कि सब विषयों के प्रति अनास्था उत्पन्न की जाए। पूरे वृक्ष का बीज जलाया जा सकता है।
हाँ, तो एकांत में बैठे मैं कौन हूँ विचार करे, ये शरीर है, ये मन है, ये विचार है, आखिर मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ रूपी की आग तमाम कंटकल विचारों को वृक्षों को जलाकर खत्म हो जाती, फिर वो भी आग सब कांटों को जलाकर खुद भी शांत हो जाती, फिर मैं कौन हूँ का विचार भी शांत हो जाएगा। जिसमें मैं कौन हूँ का विचार शांत हो जाए वही परमात्मा शांति है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चय ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। उत्तम सुख आत्मा का है और सुख संसार का है। संसारी सुख सरकाने वाला है, दुखों से आच्छादित है, और भोक्ता को जड़ता पराधीनता में आबद्ध करने वाला, और उत्तम सुख भोक्ता को ब्रह्म स्वरूप कर देने वाला है। इच्छा की पूर्ति से जो सुख होता है वो संसारी सुख है, और इच्छा वासना की निवृत्ति से जो सुख होता है वो उत्तम सुख है। इच्छा की निवृत्ति से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, इच्छा की पूर्ति से अधम सुख की प्राप्ति होती है, वो अधमता ले आता है। इच्छा पूर्ति में पराधीनता है और इच्छा निवृत्ति में स्वाधीनता है। तो भगवान कहते हैं प्रशांत मन संहीनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्म भूतम अकलमशम। जिससे सब पाप नष्ट हो गए, देह को मैं मानना, जगत को सत्य मानना और वहां से सुख की खोज करना, ये सब पापों का मूल है। जिसने आत्मा को मैं माना है, इच्छा की पूर्ति नहीं इच्छा की निवृत्ति के रास्ते लगा है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण तथा मन उसका सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चय ही
उत्तम सुख की प्राप्ति हो गई है। स्वर्ग का सुख भी उस योगी के आगे उत्तम नहीं है। चक्रवर्ती राजा होने का सुख भी उत्तम नहीं है। अभी योग वशिष्ठ में पढ़ा कि पाप संस्कार से, पाप वासनाओं से और पाप संस्कार से उपद्रव प्राप्त होते, दुख प्राप्त होते। पापी और विषय विकारी व्यक्तियों का संग अगर साधु भी करता है तो वो असाधु हो जाता है, और संसारी लोग भी साधु पुरुष का संग करते हैं तो उनमें भी सद्गुण आने लगते हैं। इसलिए संग की महिमा समझकर उत्तम संग करें। जिन्होंने उत्तम सुख पाया है ऐसे उत्तम पुरुषों का संग करें। अधम वासनाओं को पूरा कर करके जो अधम योनियों में गए ऐसे व्यक्तियों के जीवन से सीख ले ले, और उत्तम सुख को पाने के लिए जिन्होंने उत्तम चेष्टा की और उत्तम सुख को पाकर उत्तम गति को प्राप्त किए ऐसे साधु पुरुषों का संग करें। साधु भी अगर नीच वृत्तियों में फंसे व्यक्तियों के संग में आते हैं तो साधु भी असाधु हो जाता है, और असाधु भी उत्तम पुरुषों के संग में आता है तो धीरे धीरे वो साधुत्व को पा लेता है। जिसने परम कार्य साधा उसको साधु कहते हैं। साध्यन्ते परम कार्यमिति साधु। तो संकल्प निवृत्ति शांति उसमें पराधीनता नहीं है, और संकल्प की पूर्ति करने में अशांति भी और पराधीनता भी है। सुख की अपेक्षा शांति बहुत सुखदायी है। सुख तो थोड़ी देर मिलेगा फिर भोक्ता को क्षीण कर देगा, लेकिन शांति भोक्ता को भगवत सुख से संपन्न कर देगी। तो सुख की अपेक्षा शांति ज्यादा हितकारी है और गहरी सुखकारी है। लेकिन शांति में भी रमण ना करे तो स्वाधीन स्व के अनुभव में जग जाएगा। विवेकानंद बोलते थे कि तुम जो मुझे देखते हो वो मैं नहीं हूं, जो तुम मुझे देख रहे हो वो मैं नहीं हूं, जो तुम मुझे मानते हो वो भी मैं नहीं हूं। तो तुम मानोगे भावना से कि सन्यासी हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं, वक्ता हैं, फलाना है, और जो देखते हो तो इतने मोटे ताजे ऐसे वैसे हैं। तो तुम जो मुझे देखते हो वो भी मैं नहीं हूं, और जैसा तुम मुझे मानते हो वो भी मैं नहीं हूं। तो मैं क्या हूं कि अनंत अनंत सूर्य, अनंत अनंत सूर्य गंगाएं, अनंत अनंत नक्षत्र, ग्रह, तारे, पृथ्वियां, जिसमें एक गेंद की नाई विचरित हो रही है, और अनंत अनंत आकाश जिसमें है वो मैं हूं, जहां वाणी नहीं जा सकती। मुझको जानना हो तो मुझको समझना पड़ेगा। मुझे जो देखते और मानते वो मैं नहीं हूं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति, मानने की शक्ति है तो सेवा कार्य करके वासनाएं हटाएं। सबके हित में कार्य करने से करने की शक्ति का सदुपयोग होता है, करने की वासना मिटती है। करना ही है तो वासनाओं का त्याग करो, करना है तो सेवा करो, करना है तो अहम का त्याग करो। संसार का स्वरूप जान लो कि परिवर्तनशील है, मिथ्या है। क्षमाशीलता अपने स्वभाव में लाओ। अपने दुख का कारण किसी को मत मानो। जो लोग अपने दुख का कारण दूसरे को मानते हैं वे लोग जलते रहते, तपते रहते। अपने दुख का कारण दूसरे को मानेगा उसका दुख बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। अपने दुख का कारण अपना अज्ञान है, अपने दुख का कारण अपनी ना समझिए, अपने दुख का कारण अपने कर्म है। जो लोग अपने दुख का कारण दूसरे को मानते उनके चित्त में द्वेष बना रहेगा, वे तपते रहेंगे, जलते रहेंगे, पचते रहेंगे, फिर ऐसे पचन और जलन में क्रैक हो जाएंगे। तो अपने दुख का कारण दूसरे को मानने वाला आदमी हिंसक हो सकता है, निंदक हो सकता है, दुखी होगा। अपने दुख का कारण दूसरे को नहीं मानना चाहिए। अपने दुख का कारण अपने कर्म, अपने दुख का कारण अपनी समझ, अपने दुख का कारण अपनी बेवकूफी मानकर उसको हटाना चाहिए। जो दूसरों को अपने दुख का कारण मानते हैं उनकी बेवकूफी बढ़ती है, उनका दुख बढ़ता है, उनकी हिंसा और अशांति बढ़ती है। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत हिम्राता। कोई किसी के दुख सुख का कारण नहीं, अपने ही कर्म अपने ही विचार। जिसको देखकर तुम दुखी हो तो ये मेरे ऐसे हैं, शत्रु हैं, वो किसी के लिए तो हितकारी है। जिनका जैसा भाव करनी आप, वो अपनी के नेड़े के दूर।